राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 1993 दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
महाराष्ट्र में समर्थ रामदास बाबा हुए हैं जो शिवाजी के गुरु थे। उनके हृदय में एक कृपा प्रकट हुई। उनके हनुमान जी प्रत्यक्ष थे। कोई कोई तो कहते हैं वे हनुमान जी के अवतार थे, परंतु हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा थी और बड़े बड़े विचित्र काम उन्होंने किए। तुलजा भगवती का दिया हुआ खड़ग था हाथ में, तब बहुत काम किया। उनके हृदय में कृपा प्रकट हुई तो हनुमान जी महाराज से कहा कि महाराज आप जनता को दर्शन दे दें, कृपा करें दर्शन हो जाए लोगों को। कि लोग भैया कहाँ है, लोग है नहीं, किसको दर्शन दूं। कहते लोगों को तो मैं इकट्ठा कर दूंगा और आप दर्शन दो। ठीक है, लोग क्या करोगे, क्या करोगे। हरि कथा महाराष्ट्र में हरि कथा होती है, बड़े ठाट बाट से समाज ये से बैठ जाते हैं और बीच में करना करता लेकर घूमता रहता है और भगवान नाम कीर्तन करता है। अरे कीर्तन की कई पद्धतियां है, वो कीर्तन विशेषता से चलता है। फिर भगत की कथा कह दी, फिर कीर्तन करते घूमते रहे। दो रंग तबला आदि लिए हुए, सर सारंगी सतार पेटी लिए हुए ऐसे बैठते थे दोनों तरफ, वो बीच बीच में घूमते हुए कथा कहते हैं। तो कहा कि आज शहर से बाहर बड़ी विलक्षण अच्छी कथा करेंगे, तो शिवाजी ऐसे महाराज के भगवान के भक्त भी थे और राजगुरु थे। अभी कोई मिनिस्टर आ जाए तो जनता बहुत उमड़ती है, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दोनों बातें थी उनमें, तो लोग बहुत इकट्ठे हो गए। रात्रि का समय था, दरिया में बिछ गई, प्रबंध हो गया, गैस लग गए, कई तरह के बहुत दूर तक लोग इकट्ठे हो गए। तो हनुमान जी ने कहा तुम कथा शुद्ध कथा कहना। कहते शुद्ध कथा कहूंगा तो मैं आ जाऊंगा, बात हो गई। अब वे बैठ कर बैठ गए सब समाधि ठीक तरह से होने कथा। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम ये मंत्र था। ऐसे भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, बड़ी मस्ती से आनंद से घूमते हुए आंखें मीटी हुई है, मस्ती से कीर्तन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कीर्तन जम गया, पर कीर्तन करते ही रहे। लोगों ने देखा कि बाबा कुछ बोलेंगे, कथा करेंगे, सत्संग बातें सुनाएंगे, शिक्षा सुनाएंगे। महाराज उस कीर्तन में मस्त रह गए, शांत रहे। तो बाहर से लोग उठ उठ कर जाने लगे। अब पास में बैठे वो क्या किया, उन्होंने सिरे उठा गई और रवाना हुए। ऐसे बहाना करके सब उठते उठते बहुत उठ गए। बाहर से दरिया भी उठा दी, गैस का भी लगा दिया, जो फूंक निकल गई वही उठा कर चल दिए। अब वो दरी मुख रहेगी जिस पर बाबा घूम रहे थे। सब लोग दरी वाले ने देखा क्या करे, और दरी तो समेट ली और ले गए। वो बाकी रह गई तो उन्होंने बुद्धिमानी की, बाबा घूमते घूमते उधर गए तो इधर समेट ली, और इधर आए तो वही समेट ली। साफ जमीन पर आप घूमे करे कीर्तन करते रहे, तो कीर्तन करते करते भगवान हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। क्या महाराज दर्शन दो, किन को सबको दर्शन दो, सब दर्शकों को दर्शन दो। दर्शन कौन तू देख, कोई नहीं हुआ। अब तो सब उठ गए, रात हो गई ज्यादा, लोगों ने कहा कि इसके तो मस्ती आ गई, कीर्तन करना कब बंद करेंगे। कीर्तन तो हम घर पे नहीं कर ले, कीर्तन क्या सुने, ये तो हम करते जहाँ कहीं कर लेंगे। कथा से कथा करो, कीर्तन से क्या हो, इधर तो दर्शन किसको दे, सबको सबको देखे तो सभा मैदान पड़ा, कोई है ही नहीं। तो कह दो कि मैंने कथा शुद्ध गई ना, तो कहते मैं आ गया ना शुद्ध कथा कही। भगवान नाम कीर्तन है शुद्ध कथा, निर्मल कथा, बढ़िया कथा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, इसलिए अपने कीर्तन है उसकी मस्ती में कीर्तन करें। आप देखो कितना आनंद है उसमें, विशेष आप करें मन लगा कर देंगे। कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ तद्धर कीर्तनात्, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत। कीर्तन करने से मुक्त संघ होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात है। तो इस तरह से आप कीर्तन करें मस्ती से, तो बंद करने लगा तो बोलेगा भाई अभी तो 3 मिनट बाकी है, शोकर शोकर इन्हें समझा कि लोग उखता जाएंगे शायद। उखता जाओ साहब, ने तो अपने तो आन ले ले, अब उखताओ करो क्या है, आज हो जाएंगे माफी करो। कीर्तन में बड़ा आनंद है, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन हो पाऊ। कलयुग में विशेष महिमा नाम की, कीर्तन की। नाम जप किया जाता है, नाम स्मरण किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है। ताल स्वर के शरीर से बोले कीर्तन होता है, राम 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 ये जप होता है, और स्मरण मन से केवल बाहर से कुछ नहीं, भीतर से मन में राम 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 हो रहा है, मानसिक कीर्तन भी हो रहा है, वो मानसिक जप है। बाहर जो यज्ञ नहीं किया जाए दस गुना अधिक जप का महत्व है, जो राम 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 ऐसे किया जाए। इससे उपायुष जब होता है राम 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 राम, ऐसे अगर शब्द निकले उपायुष जब होता है, एक मानसिक जब होता है, धीरे धीरे राम 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 हो रहा है। तो इसे विधि यज्ञ सब यज्ञ विशिष्टो दस फिर गुण ही, विधि यज्ञ किया जाए, यज्ञ होम आदि किया जाए, उसे 10 गुना अधिक नाम जप का महत्व है, और उससे 10 गुना है उपायुष जप का महत्व। उपायुष से 10 गुना महत्व है मानसिक जप का, उपायुष सहस्रो मानस स्मृति, मानसिक 1000 गुना अधिक है। तो 1000 गुना अधिक है मन जप करने में, मन लगे तब करता है, नहीं तो मन में उसे जाता है तो नहीं होता। तो ऐसे जप की बड़ी भारी विधि है, और कलयुग में विशेषता से है, तो ऐसा जप किया जाए तो बड़ा आनंद की बात है। अब एक बात आई है कि कल ये जो बात कही थी, भक्ति 11 प्रकार की है, हमने तो 9 प्रकार की सुनी है। तो 9 प्रकार की भक्ति तो साधन भक्ति है, और साध्य प्रेम लक्षणा भक्ति वो साध्य भक्ति है। भक्तिया संजातया भक्तिया विभ्रत पर काम तनु, भक्तिया संजातया भक्तिया, 9 प्रकार की भक्ति से पैदा होने वाली भक्ति होती है वो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, वो रागात्मिका भक्ति होती है। उसमें वैष्णव महापुरुषों का कहना है, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वे कहते हैं कि वह रागात्मिका भक्ति श्री जी की हो सकती है, दूसरे जीव की नहीं, परंतु संत महात्मा ने सुनी है कि हरेक की हो सकती है, जीव मात्र उस भक्ति को प्राप्त कर सकता है। रागानुगात वे भी मानते हैं, रागात्मिका नहीं मानते हैं। भक्ति एक प्रेम होता है, प्रेम, उसके प्रेम की महिमा ज्ञान से भी अधिक है। बताया है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त है अथवा तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त महात्मा है, आत्मा रामाष्ट मुनियो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि, भागवत माया है कि जो भगवान के भक्त है आत्मा राम, केवल आत्मरमण करते, अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, कभी नीचे उतरते ही नहीं, एक परिपूर्ण परमात्मा है उस ज्ञान में, आत्मा राम से बोले निर्ग्रंथा शास्त्र मस्मान निवर्तते, ग्रंथों से वेदों से ऊंचे उठ जाते हैं, वे जो कहते हैं उसको शास्त्र होता है, उसे ऊंचे उठ निर्ग्रंथा अथवा फिर जनग्रंथि भेदन हो गयी, जन निर्ग्रंथा क्रम भगवान में भक्ति करते अहेतु की भक्ति, उसका कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ उससे कोई लेना हो, तत्व लेना हो, ज्ञान लेना हो, जैसे भगवान शंकर है, जैसे सनकादिक है, जैसे नारद जी महाराज है, जैसे वेद व्यास जी है, महाराज सुखदेव जी आदि बड़े बड़े महापुरुष हुए, वे भी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अब उन्हें क्या जानना है, क्या पाना है, क्या करना है, कृत कृत ज्ञात ज्ञापते हुए प्राप्त प्राप्त भी हो चुके हैं, ऐसे पुरुष भर भगवान की भक्ति करते हैं। कहते क्यों करते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ही ऐसे ही है विलक्षण, तो उसमें मन लगता है तो छोड़ता नहीं मन, इस वास्ते इत्थम भूत गुणो हरि ऐसे भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्ति करते हैं उनमें एक प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, श्रेष्ठ भक्ति वो प्रेम लक्षणा, वो रागात्मिका रागात्मिका दो तरह की होती है, और फिर उसमें कई प्रकार लक्षण बताए। तो प्रेम चीज है, ये बड़ा बढ़िया चीज है। संत महात्माओं ने ज्ञान की बड़ी महिमा कही है, नहीं ज्ञाने न सर्वेश्वर पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, गीता में भी कहा है। तो ज्ञान तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, ये बड़ी बढ़िया चीज है, परंतु भक्ति का दर्जा इससे भी बढ़िया बता रहा है। ये बढ़िया बताने की दो रीति है, एक तो भक्ति की संप्रदाय है, एक ज्ञान की संप्रदाय है। तो संप्रदाय में ज्ञान मार्ग वाले भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, और भक्ति संप्रदाय वाले ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं मानते, भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। ये सांप्रदायिक रीति है, जो अपने अपनी श्रेष्ठ मानते हैं, और दोनों ही आदरणीय है, दोनों ही पूजनीय है, दोनों ही कल्याण करने वाली है, जिसका मन जिसमें लगे उसमें करो, कमी किसी में भी नहीं है। संप्रदाय की दृष्टि से कमी कह देते हैं कि ज्ञान मार्गी है वो भक्ति नहीं जानते, भक्ति मार्गी कहते हैं ये मायावादी है, ज्ञान मार्गी है ज्ञान भक्ति को नहीं जानते, ऐसे निंदा कर देते हैं, वो गलती है, किसी में कोई कमी नहीं है, भगवत प्राप्ति दोनों को होती है, और आग्रह नहीं रखता किसी संप्रदाय का किसी का, तो उनको दोनों प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। कल मैंने कहा था ना, शबरी के सामने भगवान श्री राम कहते हैं, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जो सहज स्वरूप को प्राप्त होते हैं विज्ञानी होते हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाए तो सहज स्वरूप की प्राप्ति, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानम तदा अहेतुकम, अहेतुकम ज्ञान हो जाता है, वैराग हो जाता है संसार में। स्वतः पहले वैराग किया जाता है, उसमें वैराग ढीला रहता है, और भगवान की भक्ति लगने पर वैराग स्वतः होता है। जैसे बालकों को खेल निषेध कर दिया जाए तो उसमें कठिनता होती है, परंतु रुपया कमाने का लोभ लग जाए फिर खेल में जाते ही नहीं, वो उतना समय क्यों खराब करें। तो इस तरह से भक्ति लग जाती है, तब पता लगता है कि ये वैराग राग कुछ और कोई कीमत रखता ही नहीं, राग ये तो बड़ी निकृष्ट चीज है, परंतु वो अनुभव कब होती है कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति थोड़ी प्राप्त हो जाए, लव मात्र भी ऐसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उनको ये पता लगता है क्या। आप हम भी जान सकते हैं इस बात को कि नाशवान पदार्थ है, नाशवान पदार्थों के साथ आप हम कितने रहेंगे तो इनसे सुख कितना दिया जाएगा। नाशवान पदार्थों से ऊंचा उठने की हरेक की अपने रुचि होती है जब चिन्मय तत्व को प्राप्त होते हैं, चाहे भक्ति द्वारा हो चाहे ज्ञान द्वारा हो। तो जड़ चाचाओं के संयोग से सुख होता है वो राग है, इससे अलग होने की इच्छा उस वैराग्य है, और स्वरूप का बोध हो जाए इसका नाम ज्ञान है। तो ये दोनों चीजें स्वतः हो जाती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। आज का संप्रदाय के अनुसार हो तो वो एक एक की मुख्यता होती है, एक और में कमी रहती है, पर आग्रह न रखे भगवान में लग जाए तो दोनों को दोनों चीजें प्राप्त हो जाती है, तो वो भक्ति है। अब नवधा भक्ति है, ये साधन भक्ति है। नौ प्रकार ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और रामायण में गति प्रथम भजन संतर कर संगा, दूसरी गति में कथा प्रसंग, ऐसे यह महाराज हरिदास जी महाराज जो है उन्होंने भक्ति बताई। प्रथम महता सेवा ये मधुसूदनाचार्य ने से कहा है, प्रथम महता सेवा तद दया पात्रता तत श्रद्धा तेषां धर्मेषु तथे हरिगुण श्रुति। उसमें 11 भूमिका लिखी है मधुसूदनाचार्य ने अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में, 11 भूमिका लिखी है। और भागवत के अनुसार, भागवत के श्लोक है, नारद जी महाराज की भक्ति है, उसके अनुसार 11 प्रकार लिखा है, जिसमें 5वीं भक्ति है वो रत्युं क्रोत्पत्ति, वह भक्ति शुरू होती है। उससे पहले 4 भक्ति साधन होती है, साधन भक्ति है, अगर साध्य भक्ति होती है वो 5वीं और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो फिर पूर्णता होती है। ऐसे उसमें लिखा है 11 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति सबकी सब अपरा भक्ति है, ये भक्ति है साधन भक्ति। इससे अगर ये प्रेम रक्षा भक्ति है साध्य भक्ति, तो साध्य भक्ति में ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं रहता, ऐसी विलक्षण भक्ति है। तो वो 11 प्रकार 11 भूमिका अपने भागवत से श्री मधुसूदनाचार्य ने सिद्ध की है। जो ज्ञान में बड़े ऊंचे थे, अद्वित सिद्धि उनकी बनाई हुई पुस्तक है ज्ञान वाले, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, बड़ी विद्वत्तापूर्ण विवेचन है उनका। वे आप खुद भी ऐसा कहते हैं कि अद्वैत विधि पथ गई रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा षठेन केना वयम हठेन दासी कृता गोप वधु पीठेन। भगवान वो कहते हैं बड़े विचित्र ढंग से कि हम लोग कैसे हैं, कहते हम अद्वैत विधि पथ गई उपास्या, जो अद्वैत मार्ग में चलने वाले जितने हैं उनके हम उपास्य देव हैं, वो हमारी बात मानते हैं, हमारे शिष्य है, हम तो उपासनीय है उनकी, वे उपासक है सब साधक मार्ग में चलने वाले। तो अद्वैत विधि पथ गई उपास्या, अरे स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, जो स्वानंद है आत्मानंद है परमानंद है उसमें उसमें मैंने दीक्षा प्राप्त कर दी, वह भी हमारी स्थिति है। ऐसे हम थे, परंतु एक ऐसा आया पुरुष, उसने हमारे को दास बना दी। हम तो ऐसे ऊंचे थे, पर दासी कृता उन्होंने दास बना दिया। दासी कृता माना अदासा दास, दास संपदे थी दासी कृता, अद्भुत भाव में चुह होता है व्याकरण में, तो उन्होंने हमारे को दास बना लिया। सठेन एक मूर्ख त्रिदूर्त, नाम बताते हैं सठेन केरा भी वयम हठेन, हठपूर्वक जबरदस्ती हम पढ़ना नहीं चाहते, हम तो लब्ध दीक्षा है। सठेन केना भी वयम हठेन दासी कृता गोप वधु पीठेन, गोपियों के जार में ऐसा किया मेरा, बिजनौ जार का है, चोर जार शिखामणि, भगवान चोर जार शिखामणि है, इतना बड़ा कोई चोर नहीं, इतना करो कोई जार नहीं है, ऐसे भगवान है चोर जार शिखामणि। चोर है बड़े भारी चोरी करना खास क्या शौक है। तो लगता है कि दुकूल गोपांगना से दुकूल चोरम समझे गोपांगनाओं के वस्त्र चोर दिए और ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रज में मक्खन चोर नाम से तो उसका प्रसिद्धि है सब जानते हैं मक्खन चोर नहीं हुआ ब्रज प्रसिद्धम नवनोत चोरम गोपांगना से दुकूल चोरम और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम उसको याद कर तो अनेक जन्मों में जो इकट्ठा किया पाप सब चोरी कर देते एक नहीं अति मात्र अनेक जन्मार्जित महाराज पना पाप हमने अर्जुन किया ऐसा कमा कमा कर इकट्ठा किया सब चोर लेते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नम ऐसे अग्रगण्य है सब चोर अग्रगणी उसके समान चोर कोई है ही नहीं इस राज्य चोर जार शिखामणि है उसके समान तो कोई चोर है ना कोई जार है ऐसा है तो उसने हमारे को दास बना लिया। तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी भगवान के दास हो जाते हैं ज्ञान भूल जाते हैं। जनक जी महाराज ने भी कहा कि विश्वामित्र जी महाराज ये कौन है ये मुनिक और तिलक धर्मकुल पालक ये जो अलौकिक बालक है ये मुनियों के तिलक है नृपकुल पालक नृपकुल के ही पालन करने वाले हैं राजा सबका पालन करते हैं उनको भी पालन करने वाले हैं कौन है ये ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी के विषय में पूछा। क्यों पूछा क्यों उनके गजमुक्ता की बड़ी कीमती माला पहनने की थी और तुलसी की माला भी पहनने की थी तुलसी की माला साथ देखे तो कोई ऋषि बालक होंगे गजमुक्ता की माला देखे कोई बड़े क्षत्रिय राजकुमार होंगे तो ये कौन है महाराज जनक जी महाराज निर्णय नहीं कर सके। और महाराज सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो तो जीव चंद चकोरा सहज विराग रूप मन मोरा मेरा मन सहज विराग रूप है वैराग के लिए दुख दोषानु दर्शनम करना नहीं पड़ता स्वाभाविक मेरा वैराग रूप ही मन है वो मन महाराज इनको देखते ही नहीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा जो ब्रह्म सुख में हरदम मन रहता है उसका भी त्याग कर दिया इन्हें बिलोकत अति अनुरागा बहुत अनुराग हो गए बात क्या है जो ब्रह्म निर्गुण निराकार कह रहा था सोही दो रूप धरी सोई दिया हो गया वही आए है कोई परमात्मा ही है क्या बात है महाराज। तो महाराज ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है ऐसे कहने लगे तो भगवान हंस लिए हंसी भगवान की माया है कहीं पोल मत निकाल देना। तो कह महाराज ये कोस रेश दशरथ के जाए ममहित लाग जब नरेश पठाए ये कौशल्या के महाराजा दशरथ जी के पुत्र है और मेरे यज्ञ के लिए उन्होंने बोला भेजा हमारे साथ में राक्ष उपद्रव करते थे तो उनकी रक्षा करने के लिए मेरे आए महाराज और फिर आपका यज्ञ सुनाते यहाँ आ गए ऐसे उनका परिचय दिया। तो वे साक्षात ब्रह्म परमात्मा थे। तो जब तक नंद कुमार दृष्टि नहीं पर होता अब तुम बैठ तो ब्रह्म को विचार कर ले ब्रह्म विचार पर ये जब दृष्टि पर गया जाए तो पता लगेगा कितना तू ठहरता समझे आकर्ष हो जाता कृष्ण है ना कृष्ण भू अचक शब्द निर्वृत्ति वाचक ये व्यापक परमात्मा है ये तो भू वाचक और रही वो निर्वृत्ति सभा बैराग संसार संसार से बैराग होगा ऐसे है अरे खेच रहे कृष्ण सबको खेच लेते हैं मन के बड़े बड़े वैराग्य बड़े बड़े ज्ञानी तत्वों के महापुरुष उनके मन को भी खेचने वाले इस वास्ते उनका नाम कृष्ण रखा है जी कृष्ण लेकर मन को खेच ऐसे नाम से कृष्ण रहते हैं। तो इनमें विलक्षण शक्ति है ज्ञान से भी इस भक्ति में विलक्षणता है अलौकिकता है विचित्रता है स्वाभाविक एक मस्ती है एक रस है ज्ञान का रस अखंड एक रस है और भक्ति का रस प्रतिक्षण वर्धमान ये वर्धमान रस है बढ़ता ही जाता है भक्ति में बढ़ता ही ऐसा रस है तो भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसे बताया कि संतों की कृपा मिलता है लभ्य दे तो तत्कृप यही महत संघर्ष दुर्भव अगम्यो अमोघ महापुरुषों का संग दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे तत्व की महात्मा दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस कष्टिद्धिद्धाम कष्ट माम वेद तत्व था, कोई एक तत्व से जानता है। तो ऐसे महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, और मिल जा तो अगम्य है, जान नहीं सकते, हमारा पता नहीं लगता। ये तो कृपा हो जाए भगवान ही तो जानने वाले, नहीं तो वो बुद्धि की कसौटी के द्वारा संत महात्माओं को जान नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो बिचारी जहाँ अपने क्षेत्र में चलेगी ना, दृष्टि तो जहाँ दृश्य है उस क्षेत्र में दृष्टि चलेगी, इसके सिवाय और अगाड़ी कैसे जाएगी, जहाँ शब्द में दृष्टि कैसे जाएगी, क्या शब्द को आंख सुन सकेगी, नहीं सुन सकती। तो दृष्टि तो दृष्टि अपने विषय में, ऐसे प्रकृति अपने विषय में ही, प्रकृति के कार्य में ही काम कर रही थी, प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा है, उसे बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम योग्यतया, भक्त कहता है महाराज मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई, यह काम नहीं करती, मेरी युक्तियां थी चालाकी थी, बहुत सुंदर सुंदर विचार भी सब युक्तियां समाप्त हो गई, भगवान के सामने आते ही सब खत्म हो जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति है, इसकी बहुत ज्यादा महिमा गाई गई है। तो ऐसे भूमिका उनकी बताई है, ज्ञान की सात भूमिका बताई है, इसी ग्यारह भूमिका भक्ति रसायन नाम एक ग्रंथ है, मधुसूदनाचार्य का बनाया हुआ, उसमें वर्णन है, उससे भी विलक्षण वर्णन और संतों की वाणी में है, महावाणी में भी इसका वर्णन आया है। प्रथम रसिक जलन को सेवे, दूसरे दया हृदय धरनी वे, ऐसे कर उनमें भी वर्णन आया भक्ति का। इस तरह की संतों ने बहुत तरह का वर्णन किया है, तो वो भक्ति विलक्षण है, अलौकिक है। हम तो ऐसा जानते नहीं भाई, हम तो साधारण अपनी बात पढ़ाई हुए उसका भी कहते हैं। कोई भी कहेगा तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहेगा, अगड़ी की बात कैसे कहेगा, वो तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतीक्षम वर्धमानम अविच्छिन्नम प्रतीक्षम वर्धमान, ऐसे अनिर्वचनीय प्रेम है जिसका निर्वचन नहीं होता, जिसका प्रेम का वर्णन नहीं होता। जैसे कोई आदमी कृषि में आसक्त हो गया, इस बात गोस्वामी ने दो दृष्टांत दिए, कामी नारी प्यारी जीव दो भी प्रिय जीवी नाम, कामी को स्त्री प्यारी होती है और लोभी को दाम प्यारे होते हैं। अब वो प्यार का बतावे कैसे, प्यार के उसका वर्णन कैसे करे बताओ। एक बात याद आ गई, एक कोई सज्जन थे वो संत के पास गए और कहा कि महाराज परमात्मा तत्व का रूप बताओ हमें, तो भाई तुम ऐसे भजन करो, ये करो, ये कृपा करो, नहीं नहीं हमें तो बताओ। तो भाई बताने की बात कैसे बता दे, बुलाए देखा मैं क्या फैसला है, तो फैसला थोड़ा ही बुला दे, ये ऐसा फैसला तो है नहीं, वो ऐसे साधन करो हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं मानते, हमारे तो बताओ, वो जो तत्व ज्ञान है जिनको, वो जो प्रेम है वो बताओ, तो ज्यादा जमीन कर लेगा। तो महाराज ने उसकी लाठी मार दी, क्या मारते क्यों हो, नहीं मारते नहीं हो, मारने से क्या हर्ज होता है, हमारे पीड़ा होती है, तुम पीड़ा बताओ, हमें पीड़ा बताओ, बताओ क्या मेरी पीड़ा हो रही है, कि भैया बताओ तुम्हारी पीड़ा कैसी है, कैसी पीड़ा हुई हमारे को बताओ, देखाओ कि बताओ क्या, तो तुम शरीर की पीड़ा भी नहीं बता सकते, तो ज्ञान कैसे बता दो, बुद्धि से ही परे है, ये तो स्थूल में त्वचा की दृष्टि के ऊपर मानसिक ऊपर लगी जाती, इसको भी तुम बता नहीं, बताओ हमें दिखाओ, पीड़ा है तो मेरे को दिखाओ, अब दिखा दिखा सकते हो, आप इतने बैठे हो कोई पीड़ा दिखा दोगे, दर्द हो रहा है, और दर्द कैसा दर्द हो रहा है, तो मान सकते हैं दूसरा सुनने से, पर दिखा सकते हैं आप, जब पीड़ा भी तुम्हारी नहीं दिखा सकते तो हमारे ज्ञान कैसे दिखाओ तुम्हारे, तो ये दिखाने की ऐसी चीज नहीं है, साधन करो आपको पता लग जाएगा, साधन करने से पता लगता है, साधन करने से पता लगता है बहुत विचित्रता से, आपको हमारे को सबको पता लगता है कैसे, जैसे प्रेम से कीर्तन किया जाए तो उसमें एक आनंद आता है, क्या उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, मान है, बढ़ाई है, आराम है, नींद है, समाधि है, क्या है बताओ। ये सुख की चीज होती है। तो पांच विषय वहां नहीं, वहां कोई गाना बजाना नहीं, कोई बाहर की विषय नहीं। उस कीर्तन में एक आनंद आता है, उसको बताओ कैसे है। अरे साधन में मामूली जो कीर्तन में एक आनंद आ जाए, सत्संग में एक सुख मिलता है, तो बताओ। हमारे कई भाई बहन सत्संग में आकृष्ट हो जाते हैं। सत्संग जहाँ जाता है वहाँ होता, वहाँ जाते हैं और प्रेम से सुनते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं, खर्चा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सत्संग नहीं छोड़ सकते। और पूछा जाए तुम क्या ऐसे समझते हो, बताओ हमें। घर वाले कई कहते हैं अरे करते क्या सत्संग, तो एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार, फिर हर दिन सत्संग क्या करे। पर राम राम करो, झूठ कपट मत करो, ठगाई मत करो, किसी दुख मत दो, यही तो सत्संग है। और सत्संग क्या, जब इतना ही कहते वो तो हम जानते हैं सब ये सत्संग है, उस दिन क्या करोगे। बोर्ड मना करता है परंतु बता नहीं सकती मेरा सत्संग कैसा है। एक बात याद आ गई, श्री सेठ जी जयदयाल जी थे, इनके भाई थे हरि कृष्ण जी छोटे, उन्हें छोटे से शिवदयाल जी, उनसे छोटे मोहनलाल जी, चार भाई थे। तो भागुड़े से कलकत्ता बुला रहे थे लोग, कलकत्ता गए तो हरिकृष्ण जी कहा कि माँ मैं भी जाऊं। तुम क्या करेगा, तो कि मैं वहां सत्संग सुनूंगा। जयदयाल जी कहा भाई सत्संग तू यहीं बैठा रहे, तू ही यहीं बैठा है, यही यहीं बैठा है, फिर वहां जाकर क्या करेगा। तो कि माँ जी यह मैं नहीं बता सकता हुआ था, इनके सामने सत्संग होती है तो उसके सामने बातें पैदा होती है। तो अपने घर तो साथ ही बैठा है, रात दिन साथ रहते हो, फिर जाने क्या जाओगे। कहते वहाँ सत्संग होगा, उसमें एक रस होगा। माँ जी को आश्चर्य आता है, तू तो सुनाने वाला और ये सुनने वाला, दोनों यहीं बैठो घर में, तेरे को तो बुला रहे हैं लोग, जा बने। हरिकृष्ण को क्या बताओ माँ जी, हरिकृष्ण कह रहे माँ जी वहाँ सत्संग होती है। तो सत्संग होते समय जो बातें होती है वो घर में बैठे हुए शेठ जी हरिकृष्ण जी को नहीं समझा सकते, वो विलक्षण बातें होती है। सत्संग में जितनी खुलती है ऐसी बातें। एक हमारे मित्र थे, वो कहा करते कि तुम्हारे से कोई बात पूछे तो तुम कुछ नहीं बताते, सत्संग में क्या होता है कि विलक्षण बातें बताते हो, पूछे तो मेरे लोग भोले जो तुम्हारे से पूछते हैं, पूछने में ऐसी बात नहीं आती जो सत्संग में आती है। हरिप्रसाद जी पंडित वो कहते थे आप पूछे तो पौध निकल जाए, कुछ नहीं बातें मामूली बताते हो, यार सत्संग में बातें बहुत विलक्षण आती है। तो सत्संग में आती तो हमारे वो कपट थोड़ा ही है कि पूछे जिसको न बताऊं, मेरी नीयत ऐसी नहीं है, आपके सामने सफाई देता हूँ मेरी। परंतु लोग समुदाय सुनने वाले होते हैं, उनकी उत्कंठा होती है सुनने की, तो उस समय में जो बातें होती है पैदा वे मेरी हो नहीं सकती, मैं जोर लगाता हूँ तो फैल हो जाता हूँ, वैसे होता नहीं, ऐसी विलक्षण बातें होती है। मैंने इस विषय में आपको हंसी आएगी और मन में आएगी, कीर्तन कहने की बात तो नहीं रही। मैंने श्री गोविंदा जी से पूछा कि शेर जी जब आदमी सुनते हैं तो वहां सामने आते हैं तो उसमें मेरी बातें अच्छी अच्छी पैदा होती है, तो यह क्या मान बढ़ाई है, मान आदर करते हैं लोग तो बातें पैदा होती है, बढ़ाई करते हैं तो वाह वाह करते बातें पैदा होती है, तो ये मान बढ़ाई है क्या है, मैं समझ नहीं पाया ठीक तरह से। आदमी को तो मान बढ़ाई तो भोग है, तो भोग से तो बचना चाहिए। ये मान बढ़ाई भोग भी हो सकता है और ये न्याय है, सुनने वाले जब चाहते हैं तो भगवान की कृपा से उनके लिए बातें पैदा होती है, तो न्याय है, उचित है। ये केवल अपने भोग इच्छा ही नहीं, ये भी है, दोनों होती है। तो मान बढ़ाई से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए और ऐसे सुनाओ तो ऐसा न्याय है, सिद्धांत है, कुछ सुनने वाले चाहते तो आती ऐसी बातें, भगवान की ऐसी विलक्षण बातें हैं जो सुनने वाले चाहते हैं तो उसे पैदा होती है। ऐसे हमने कई बार बातें देखी है। कलकत्ते रहते थे, पुरानी बात है, कोई 60 वर्ष की होगा, 2000 से पहले की बात है। तो वह कहता था, फिर चक्रधर जी महाराज आते थे, मैं व्याख्यान बंद करता तो वे आ जाते। उनके प्राय वही बात आती, जो मैं विषय कहता हूँ वही विषय होता। तो ऐसी बातों से मेरा असर पड़ा है कि ऐसे सिद्धांत की बातों की आवश्यकता होती है। जैसे प्यासे के लिए जल की जरूरत है, भूखे के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे लोगों के हृदय में जिस बात की उत्कंठा होती है वो सब विषय निकलता है, वैसी बातें आती है। तो इस बात से मैंने पहले भी कहा था कि श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की मूढ़। तो श्रोता की महिमा विशेष है, सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं तो वक्ता से कहला लेते हैं, भी वक्ता के मन में पैदा हो जाती है बातें। तो ये सब बातें करती है सुनने वालों की कृपा से। वो चाहे अभिमान करेंगे मैं बढ़िया सुनाता हूँ, तो मेरे तो ये भोगी हुई बात है, मन करता बढ़िया सुना हूँ, आती ही नहीं मन में, लोग उगता जा मैं भी उगता जाऊँ, आती नहीं। और कहने लगता हूँ कभी कभी ऐसी आती जो लोग भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए, हमारे भी आनंद हो जाए। ऐसी बात है, तो अभिमान से बातें रुकती है या प्रेम से बातें पैदा होती है, प्रकट होती है विचित्रता से। इस तरह से भक्ति है वह पैदा होती है, जो प्रेम होता है वो प्रेम से समुदाय होकर प्रेम करके सच्चा हृदय करके करे तो देखो ये अब आया अनुवृत्या तुष्येद आत्मात्म दो हरि। भागवत माया है कि कपट न हो, करे कपट तदि गान, नवदा भक्ति माया है। कपट मन में कपट नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सरसों सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। कोई कपट नहीं है, कोई दोष दृष्टि नहीं है। अब दोष दृष्टि करेंगे तो वो तत्व मिलेगा नहीं, रह जाएगा यू कि स्वामी जी ये तो बात अच्छी करते, एक बात खराब है, मेरा मौज करो तुम्हारे तो जयराम जी की। वो दोष दृष्टि से बात आती नहीं, कह दो कहने पर भी, सुनने पर भी सुन समझ नहीं सकते। मैंने ऐसे देखा है, मैंने ऐसी बातें कह करके देखा है, तो जिनके थोड़ी सी मन में और तरह की बात होती है नहीं समझ सकते, हमारे ताकत से बाहर की बात है। मैंने करके देखा है, बता करके, तो मैं नहीं समझा सका, इसमें मैं फेल हो गया। मैं पढ़ता था तब से मेरे मन में बात थी कि मैं जिस विषय को समझ गया हूँ उस विषय को दूसरों को समझा सकता हूँ, अभिमान था। कैसे विषय हो, कितना ही गहरा हो, मैं जान गया तो उसको जनाने में क्या, मैं जान दूंगा, पर तो मैंने मेहनत कर देख लिया नहीं जना सका, समझा नहीं सका, फेल हो गया। अभी तो एक बात है, विवेचन करने में तो फेल नहीं हुआ हूँ, समझाने में फेल हो गया, पर कोई कहे तो विवेचन कर सकता हूँ, इसमें तो अभी तक उत्साह आता है। फेल हो गया तो कहते भी इसमें भी हम तो फेल हो गए, इसमें तो कह देता हूँ, इसमें कोई बड़ा चतुर हो गया, असली हो गया, ये तो बात नहीं होती है। परंतु जैसे दूसरे को समझाना है इसमें तो फेल हो गया, नहीं समझा सकता, कैसे समझाऊं बताओ, वो तैयार नहीं, उसके मन में कई तरह की बातें हैं। ऐसी बातें हैं, कबीर चंदन बावनो जग सब बन पलटन हार। बावन में सब जग पुराना हो जाता है, चंदन सूख जाता है तो फिर उसकी सुगंधी होती है, हरे भरे नहीं काम नहीं है, सूते सूखे दे दे सुगंध, तो सूखे में सुगंधी होती है, चंदन के फूल नहीं होता फूल। एक ने कहा है कि ब्रह्मा जी को कोई अकल देने वाला नहीं था, नाकारी पुष्पों खुल चंदन अच्छे, चंदन के फूल नहीं बनाए, लकड़ी में इतनी सुगंध, फूल में कितनी सुगंधी होती बनाया ही नहीं। और एक सुदंड होता है साथ है कि फल नहीं होता, लकड़ी में इतना मीठा ऐसे तो फल होता कितना मीठा होता, धातु पुरा को बुद्धि दो भूत। ब्रह्मा जी को सलाह देने वाला मिला नहीं, तो गंधम सुवर्ण नहीं सोने में सुगंध कर देती, कैसी बढ़िया थी, फल भी सुदंड नाकारे पुष्पम कर चंदन विद्वान कुली नो दीर्घ जीवी, कोई विद्वान श्रेष्ठ हो तो सदन पहले ही मर जाता है। इस वास्ते ये क्या ब्रह्मा जी को कोई सलाह देने वाला होता है तो ठीक दे देता कोई सम्मति, बुद्धि देने वाला कोई मिला नहीं। दादो पूरा को बने बुद्धि दो भूत की बात आई मेरा बताओ। आप ये लकड़ी में जब इतना मिठास है तो फल कितना मीठा होगा। एक दंड का अगर फल लग जाए तो चंदन की लकड़ी में इतना सुगंध तो फूल आवे तो कितना उसको निगार हो सोने में सुगंध कैसा है। विद्वान कुलीन बढ़िया होती है वो ज्यादा जीता नहीं मर जाता है तो क्या करे। मनीषी ना संत ने थे हितेशन हितेश संत ने थे मनीषी ना सुरस्य विद्वान दुर्लभ दुर्लभम। जो विद्वान है वो हमारे मित्र नहीं है, हमारे मित्र है वो विद्वान नहीं है। क्या करना है ऐसे विद्वान है हमारे मित्र हो जानकारी विशेष हो ये बात दुर्लभ है। यथो औषधम स्वाद वितंत दुर्लभम। औषध हो रोग मिटाने वालो स्वाद भी हो मीठी भी हो औषधि कड़वी औषधि होती है मीठा कुपित हो जाता है। मीठी और औषधि दुर्लभ होती कम होती है अभाव नहीं है। ऐसे विद्वान और हमारे मित्र हमारे हितेशी ऐसे जानकार मिल जाए। विद्वान सुदुर्लभ होते राम ऐसा दुर्लभ है यथोधम स्वाद दुर्लभ। तो ऐसी बात कम मिलती है भगवान की कृपा हो जाए तो मिल जाए भाई तो बड़ी दुर्लभ चीज है। तो ऐसी बात है तब पता लगे कि भगवती क्या है ज्ञान क्या है वैराग्य क्या है तत्व क्या है। कल पूछा था आज पूछा है कि हम तो 9 प्रकार की भक्ति हुई आपने 11 प्रकार की भक्ति बता दी। तो भाई हमने तो सुनी जैसी पढ़ी जैसी बता दी ऐसा आता है हमने देखा आप देख रहे ना भक्ति रसायन में लिखा है ग्यारह और सिद्धांत दिया है भागवत का भागवत के अनुसार बताया है। तो ऐसी बात है नारायण 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 नारायण। अब एक प्रश्न आया है वो भाई कहता है कि यह शंका हमारे दिल में बहुत दिनों से उठ रही है। एक शंका है क्या शंका है कि संपूर्ण जगत में परमात्मा विराजमान है ये बात है। तो हिंदू मुसलमानों का नाश करते हैं बहन बेटी की इज्जत खराब करते हैं लूट लेते हैं मार देते हैं बहु बेटियों को ऐसा करते हैं नष्ट करते हैं और धन संपत्ति भी नष्ट कर देते हैं आतंकवाद का राज्य कायम कर रखा है। क्या उनको ऐसा करते समय भी अपने परमात्मा का पास देखें और उनका कोई प्रतिकार न करें। ये हमारे बहुत दिनों संता है सब भाई भगवान का स्वरूप है। तो इस बात को सुना जाए ध्यान दे करके आज तुम जब युद्ध करने को चले तो युद्ध करना चाहते नहीं थे भगवान का उद्देश्य तुम युद्ध करो बड़े जोर से कहा कुतस्थ आकर्ष में लिपे ये कहा था कहा से आगे तेरे में आज नहीं चाहिए इस कह तो तुझसे हृदय दुर्बल जब इस क्लाइ की मास मंगल दुर्बलता को चाह खड़ा हो जा युद्ध कर। भगवान बड़े जोर से कहा कुतस्थ तो हमें कहां से आई कहा था। तो अर्जुन कहता कथम भीष्म हम संख्य द्रोण जी महाराज भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं आप युद्ध की बात कहते हैं टिकायत कैसे है? मैं डरता हूँ मारने से डरता हूँ मरने से डरता नहीं हूँ कायरता तब तो हो मरने से डरता हो मेरे भय थोड़ा ही कभी मार देंगे कोई मेरे को। मैं तो डरता हूँ धर्म से जो संसार में दो ही बूढ़े होते हैं एक तो हमारे वंश परंपरा में दादा परदादा आप ये बूढ़े होते हैं बड़े होते हैं एक हमारे वो पढ़ाने वाले ज्ञान देने वाले मेरे को विद्या देने वाले वे बड़े होते हैं। तो द्रोणाचार्य तो हमारे बड़े हैं विद्या देने में भीष्म जी महाराज में कुल में वृद्ध है। तो एक कथम भीष्म महासंख्य द्रोण इसको भी बाणों के द्वारा मारू कैसे मारू बताओ आप बताओ मेरे को कह दे तुम क्ले भीम मास खराब हो जा तो मेरी को उत्तर सता है अकेले मशहूर न पूछ सकता तेरी के हिंजरा कहीं का करो युद्ध कर। तो अर्जुन कहता कथन भीष्म महर्षि कैसे करूं महाराज पूजा करो वही शूद्र महाराज, ये तो पूजा के लायक है। प्रतिवर्षा प्रथम युद्ध करूं, अरे यीशु भी बाणों के द्वारा जिसे प्राण हरण है ऐसा युद्ध करूं, कैसे करूं आप बताओ? ये वो न्याय है, दोनों तरह से बूढ़े उनके सामने पूजनीय है। पूजा करो वही शूद्र, दोनों पूजा के लायक है और पूजा के लायक उनके सामने सामने गुरु कृत्य तंकृत्य बप्रित्य वासुद जो गुरुजन है उनको रे तू कह दे तो स्मशान जाए थे वृक्ष गृद्र कंकोप से बीता गिर और कंक जैसे कौए जिसके ऊपर बैठे पीठा करे ऐसा वृक्ष मशाना का वृक्ष होता है वो जो गुरुजनों को रे तू कहता है तिरस्कार करता है वही। और आप कहते हो मार दो इनको, ये कैसे मारते बताओ? ये कोई न्याय है? बड़े जोर से बताओ। तो भगवान ने उपदेश दिया, ऐसे बोलता बोलता विचार किया कि भगवान भी तो जानते हैं, ये कोई भगवान न जानते हो बात थोड़ी है। भीष्म द्रोण क्या है, मैं क्या हूँ, इस बात वो जानते हैं। फिर भी कहते खड़े हो जाओ क्या? तब क्या हमारा नशीरित विधवा कतर नौकरी है, युद्ध करेगा न करेगा मैं पता नहीं है महाराज, और युद्ध में जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसका भी भरोसा नहीं है। केवल गुरु हत्या हत्या हो जाएगी, अरे भोग मिलेगा तो दुर्लभ प्रतिभाव लघु से समय भोग पदार्थ मिलेंगे राज्य, उसको हम नहीं चाहते न जाने भदवा न जीती विषावा, जिसको मार कर हम जीने की इच्छा भी न करे हम जीते। अरे रो जी जाओ कुटुंब मर गया रो बैठे, तो उनको मारना जीना मैं नहीं चाहता महाराज। अभी बड़े जोर से कहा भगवान तो भगवान ही थे सर, अभी अपने पास के पक्के लड़ाई करू मारो इनको तो बताए कैसे मारे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे, अब भीष्म जी का युद्ध हो रहा था। भीष्म जी ने ऐसे बाण मारे इस तरह से किया कि अर्जुन के हाथ बंद कर दिए, लफे को भर दिया, बड़े बड़े से चला नहीं सकता। ऐसा हुआ तो भगवान ने देखा क्या करता है, मार बाण मार बार बार वो बाण मारने लगा। भीष्म जी सामने आए, जब विष्णु जी मान मारते हैं जोर से, भगवान कृष्ण दलगाम पकड़े हुए है तो छोटे छोटे बाण वाले का छोटे छोटे मान मारे या हाथ रे अंगुल ठोला में ऊपर जोर से भगवान की वो लगाम पकड़ना मुश्किल, और वो तोत्र था हाथ में चाबुक उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। भगवान ने कह रहे क्या तुम करता है, देख मेरी मुश्किल हो गई, घोड़ों की लगाम पकड़नी मुश्किल, ऐसे घाव कर दिए मेरे कवच तोड़ दिया एकदम, पता लोह का कवच था वो तोड़ दिया, खून सपड़ने लग गया, मेरे लोहलान कर दिया है, तू क्या करता है? अर्जुन कहता महाराज क्या करूं, चलते नहीं है, खूब चलता है, नहीं चले तो भगवान कूदे कूद करके चक्र लेकर दौड़े के मार दूंगा मैं भीष्म को। भीष्म आइए आइए महाराज आइए मारिए मारिए, आज त्रिलोकी में मेरा दर्श हो गया, भगवान ने मेरे ऊपर शत्रु उठा लिए, आप कहते हम शत्रु नहीं उठाएंगे, हरी ब्राह्मण तो रही है चक्रदेव उठाओ क्षत्रिय है जो हरी हाथ अनुशस्त्र कहूँ तो लाजो गंगा जनने को शांत अनुसूतन कहूँ असली माँ बाप बेटा नहीं मैं, अगर तेरे शत्रु न पकड़ा दू तो भगवान सत्य है। विजय महाराज खुश हुए, आज महाराज में तो निहाल हो गया, दो बार दौड़े दो बार एक बार तबू लेकर दौड़े। पीछे अर्जुन गया भगवान चाहते पकड़ में जोर से पकड़ा तो ऐसे गए जब अर्जुन घसीट गया पीछे, अर्जुन सुना मैं बलवान हूँ बड़ा महाराज, भगवान बल सा क्या बल से इस तरह से गए, भगवान का पीतांबर गिर गया। उसका अर्थ होता है पृथ्वी कहती है महाराज आपकी प्रतिज्ञा भंग होगी तो हम ठहरेंगे ही नहीं, पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, क्या कर रहे हो तो पीतांबर तो घबरे मत चलिए। तो भीष्म जी महाराज सामने, तो भीष्म जी भगवान को भगवान जानते थे परंतु युद्ध में ऐसे जोर से महाराज युद्ध किया है। भागवत में इसका वर्णन आता है, ध्यान वर्णन आता है, भीष्म जी महाराज अंत समय में भी जैसे भगवान का पूजन करे चंदन से पुष्पों से मालाओं से सजाकर सुंदर फिर ध्यान करता है भगत, ऐसे भीष्म जी महाराज अंत में ध्यान करेंगे मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है लहु लुहान हो रहे हैं, और ऐसे यह पूजा करिए, यह भगवान की पूजा है, स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य अपने कर्मों से पूजन किया और उसी का ध्यान करते हैं, मान लगा कर घाव कर दिए भगवान के, उसका ध्यान करते करते मरे पूजा करिए भगवान की, तो ऐसे पूजा होती है। तो भगवान साक्षात भगवान की पूजा होती है, तो भगवान रूप से कोई आ जाए, आस्थाई बन करके बहन बेटियों पर हाथ दिलावे, जैसे धन ले ले सभी मारने तैयार हो जाए, उस समय में भगवान की पूजन होती है, तलवार से, बंदूक से, भालों से, ऐसे पूजन होता है। वो पूजन है भगवान का, समझे, है तो भगवान। परंतु इस समय भगवान किस रूप से आए, भगवान की अलग अलग पूजा होती है। शक्ति पूजा करो तो लाल वस्त्र से करो, हनुमान जी को चढ़ाओ तो लाल पुष्प लाल चढ़ाओ, गणेश जी चढ़ाओ लाल चढ़ाओ, और भगवान चढ़ा दो सफेद पुष्प गुलाब ये चढ़ाओ, ऐसे अलग अलग पुष्प हो जाए थे। तो भगवान किसी इसी रूप में आ जाए, मुसलमान रूप से ही आ जाए और न्याय करने लगे, तो उनकी पूजा वैसे ही करो ठीक तरह से, और जैसा देव वैसी पूजा, ये विधि शास्त्र की, समझे, अच्छी तरह से पूजा करो। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे अराजकता हो, राज कोई सहायता कर न सके, अराजकता करते हैं। उस समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों का क्षात्र धर्म होता है, तलवार समाओ करो काम से उत्साह से, समझे, अपनी रक्षा करने का अपने पर दायित्व है और शास्त्र की आज्ञा है, ऐसे खूब करो उत्साह से। भगवत बुद्धि मत हटाओ, है साक्षात भगवान, परंतु भगवान की पूजा अब इस रीति से करनी है, जैसा देव वैसी पूजा, जैसा देव वैसी भगवान इस रूप से आए हैं ना, तो इसकी यही पूजा, भगवान खुश होंगे। भीष्म जी महाराज पर भगवान बड़े खुश होंगे, प्रसन्न हो गए, बाणा से मारा, लो लुहान कर दिया भगवान को, समझे, जब भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, स्वकर्म अपने कर्म पूजन करे। तो ऐसे कोई आवे, कोई चोर है, डाकू है, लुटेरे गा जाए, तो उनकी पूजा करो वैसे ही ठीक तरह से, कोई पाप नहीं, जैसा देव जैसी पूजा, वैसे देवता जैसी पूजा होती है। तो शास्त्र की आज्ञा है ये, हृदय में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, बैर भाव हृदय में नहीं होना चाहिए। हृदय में बैर की शुरुआत है, पर बैर करो तो उसमें दोष लगता है, और क्रिया में तो मार डालो तो पाप नहीं लगेगा। आत्मायांतम अन्या देवा विचार्य नात्राई बदे दोषो हंतुर भौतिक अस्तना, साफ लिखा धर्म शास्त्र में कि आत्ताई है, छह काम करे, अग्निदे गर्दे जो क्षेत्र दार धनहार बौरी पखार तो शस्त्र गई अवध्य वैध्य खटकार, ये छह काम करने वाले अवैध ब्राह्मण वेदांत पारगम ये सब ब्राह्मण हो तो वो भी मार दो, मारने पाप नहीं होते। अग्नि लगा दे, जहर दे दे, और क्षेत्र हर रहे, अपना जमीन हर रहे, और स्त्री को हर ले जाए, धन को ले जाए सभी, और शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको मारने में दोष नहीं लगता। शास्त्र कह, मैं नहीं कहता हूँ मारने का, कहत कबीर में कहता दोनों मन गोर कह जैसे मैं क्या करूँ, शास्त्र कहता है अन्य देव अविचार्य, विचार नहीं करना उसमें, तो बस वही पूजा, उसको मार देना टुकड़ा कर देना, ये पूजा है, ये भगवान की पूजा है, भगवान इस रूप से आए हैं। लोग सब काम करो तो भगवान का पाप भी करें तो क्या है, एक तो शंका मेरी बड़ी विचित्र, एक तो शंका करी कि भगवान के साथ बैर करे तो उनका भी कल्याण हुआ, और पूजन करे उनका भी कल्याण होता है, रावण आदि का कल्याण हुआ ना, तो ये पूजा आदि में झंझट बनना पड़ता है, बैर में कोई बात लाठी बजाओ सामने करो, तो भगवान का पूजन करें तो ये भी मार्ग है कल्याण का, ये वो भी मार्ग है, शास्त्र में आप कहता ही है कल्याण होता है, तो बहुत ठीक, भारत तो दोनों है, परंतु भगवान की पूजा इस तरह से वो कर सकता है जो मरे नहीं किसी से, देवताओं से दानों से किसी से न मरे, तो फिर भगवान से युद्ध करे, रावण जैसा कोई हिम्मत रखते वाला हो, कोई चीज मछल जाओगे तो क्या दशा होगी, ये रास्ता कर रहा है, जरा भजन स्मरण करो से रजा भी लाभ है, इसमें पाप करोगे अन्याय करोगे तो मठ ले जाओगे, शिवाय भगवान के किसी से मरे नहीं, ऐसा हो तो भगवान सिद्ध करो, वो मार्ग उनका है, समझे, हर एक आदमी का नहीं है, भजन करो इतना फायदा ही फायदा है, पर इस तरह से जाओ तो पक्के ऐसे बन जाओ, शिवाय भगवान और किसी से मरेगी नहीं, तब करो सिद्ध करो, कोई परवाह नहीं है। तो इस बात ये शंका बिल्कुल सिद्ध से उठा दो कि ऐसे में कोई पाप की बात है ही नहीं, आयान तो हन्यादेव अविचार्यन ना तो ताई बधे दोष अंतर भौतिक मारने वालों को कोई पाप लगता ही नहीं, मारना पूजा है, उसको पाप से बचाना है, कि मार रहा है तो पापी बन रहा है ना, वो अन्याय करके पापी बन रहा है, तो पाप से बचाना बड़ा पुण्य होता है, कि पाप से बच जाए और पहले पाप की जगह प्रायश्चित हो जाए तो नए पाप से बचता है, पुनः पाप के प्रायश्चित हो जाए तो भला है उसको। ये उनकी पूजा है, आदर है, सत्कार है। महाराज भगत पर जो जो आता है सामने, अर्जुन के यही तो विचार था, कदम भीष्म भीष्म द्रोण कैसे मारूं। अरे भीष्म द्रोण तो जैसे कोई भीतर में फोड़ा हो जाए, ऊपर से चमड़ा अच्छा है तो उसको डॉक्टर चीर देते हैं। अरे चीरते क्यों, तो चमड़ा तो अच्छा है। अरे अच्छा आता है, भीतर मवाद भरी हुई है। ऐसे भीष्म द्रोण चमड़ा तो बड़ा अच्छा है, तुम्हें चीरना ही पड़ेगा, क्यों दुर्योधन भीतर में वो मवाद भरी है भीतर से, तो उसको सब काम करना है, तो चीरा दे करके मवाद निकाल देना साफ, फिर बलम पट्टी ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भाई ये सब ऊपरी चमड़ा है, चीरना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई करे वो ऑपरेशन कर दो। तो अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, नाश कर रहे हैं दुनिया का, ये कर रहे हैं, फिर भी अनजान कर रहे हैं। अनजान आदमी ऑपरेशन करता है तो जीते मांस को काट देता है, तो जीते मांस को काट देना ठीक नहीं। इस बार से चिल्लाना चाहिए, मारो मत भाई, काटो मत, काटो मत, चिल्लाना काम की चीज है। और फिर विचार करो, अपने विचार कर करो, तो इसमें कर्तव्य अपना आ जाता है। जब वर्णम अर्जुन के आपसे आप युद्ध प्राप्त हुआ है, सुविधा क्षत्रिय लबंते युद्ध ईदृशम, ऐसा युद्ध मिल जाए, युद्ध बड़भागी है क्षत्रिय, तो ऐसा बड़े बड़े युद्ध आ जाए सामने, तो ऐसा आ जाए तो इसमें आनंद आना चाहिए, खूब युद्ध करने में मस्ती आनी चाहिए। अर्जुन यही कहा अंत में, करी से वतनम था नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया महाराज, युद्ध नहीं करना चाहते, ये मोह था, मोह नष्ट हो गया, तो याद आ गई बात ठीक है, करी से वतनम था, अब आ गया करो जैसे मैं करूंगा। इस वास्ते इसमें कोई शंका मत करना, फिर रह जाए फिर पूछ लेना।